नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर चर्चा करने के लिए आज शाम सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि संकट के समय रचनात्मक भूमिका निभाना विपक्ष का भी कर्तव्य है।
नहीं, ये प्रोटेस्ट है, ये तो इन लोगों का पॉलिटिक्स करना है, देश के हित में कोई सोचना नहीं है। दुनिया में सभी जगह तनाव है, इस बीच में भारत में एकदम शांति भी है। देश को सपोर्ट करने बजाय इस समय ये तो इसमें भी सिली पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संसद के दोनों सदनों में पश्चिम एशिया संघर्ष पर बयान दिया था। सरकार ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएमयूआई के तहत एलपीजी कनेक्शनों के लिए रिफिल बुकिंग की समय सीमा को संशोधित करके 45 दिन कर दिया गया है। दावों में यह भी कहा गया है कि गैर पीएमयूआई सिंगल बॉटल कनेक्शन के लिए नई समय सीमा 25 दिन और गैर पीएमयूआई डबल बॉटल कनेक्शन के लिए 35 दिन है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है और मौजूदा रिफिल बुकिंग की समय सीमा अपरिवर्तित है। भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने कहा है कि देश भर में ईंधन की कोई कमी नहीं है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि एलपीजी, कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और आपूर्ति श्रृंखला बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चल रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष के 26वें दिन भी पूरे क्षेत्र में हमलों का सिलसिला जारी है। राजनयिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। इसराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में अभियान तेज कर दिया है। इस बीच अमरीका ने ईरान को संघर्ष समाप्त करने और उसके परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के उद्देश्य से 15 सूत्री प्रस्ताव भेजा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान समझौता करना चाहता है। मीडिया की खबरों के अनुसार ये प्रस्ताव मध्यस्थों के माध्यम से भेजा गया था। इसमें शत्रुता को रोकने, ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने और उसके क्षेत्रीय भूमिका को नया रूप देने के लिए व्यापक ढांचा प्रस्तुत किया गया है। लोकसभा ने ध्वनिमत से वित्त विधेयक 2026 पारित कर दिया है। यह विधेयक वित्त वर्ष 2026-2027 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने का प्रावधान करता है। सदन ने सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी दे दी है। आज सदन में वित्त विधेयक 2026 पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि यह वित्त विधेयक मध्यम वर्ग पर केंद्रित है और सरकार ने 17 महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाओं पर बुनियादी सीमा शुल्क से छूट दी है।
We have exempted the basic customs duty.
हमने 17 जीवन रक्षक दवाओं पर बुनियादी सीमा शुल्क से छूट दी है। क्या इससे छोटे परिवारों, आम नागरिकों को लाभ नहीं होगा जिनके परिवार के बुजुर्ग या सदस्य अस्पताल में भर्ती हैं और जिन्हें ये महंगी दवाएं खरीदनी पड़ती हैं?
In hospital and who have to buy these expensive medicines.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश में कोविड के बाद लगभग 1024 नई रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने विश्वसनीय यात्रियों को निर्बाध टिकट बुकिंग सुनिश्चित करने के लिए धोखाधड़ी रोकने के उपाय किए हैं।
जो बिचौलिए और टाउट्स टिकट को तुरंत लेना चाहते हैं, उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई हुई है। 3 करोड़ से ज्यादा फेक अकाउंट हटाए गए और कई जगह टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक साथ टिकट बुक कर देते थे, वो करीब करीब बहुत बड़ी मात्रा में उसको समाप्त कर दिया गया है। आज जेन्युइन पैसेंजर्स को कंफर्म टिकट मिलने लगा है।
छत्तीसगढ़ में आज माओवादी संगठन के एक शीर्ष नेता पापाराव समेत कुल 18 माओवादियों ने समर्पण कर दिया। समर्पण करने वालों में 7 महिलाएं भी शामिल हैं। पापाराव माओवादी संगठन की एक क्षेत्रीय समिति का सदस्य था और उस पर 25 लाख रुपए का इनाम था। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान द्वारा निहत्थे लोगों की हत्या की स्मृति में आज नरसंहार दिवस मना रहा है। कोड नेम ऑपरेशन सर्चलाइट के अंतर्गत 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तानी बलों ने निहत्थे लोगों की हत्या कर दी थी। छत्तीसगढ़ में आज पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल की शुरुआत होगी। ये खेल 3 अप्रैल तक चलेंगे। केंद्रीय खेल और युवा कार्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया इन खेलों का शुभारंभ करेंगे। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज लगभग 2% से अधिक की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।